पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र अपनी कार से सिंघानिया विला पहुंचता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। सुमन ये देखकर चिंतित हो जाती है कि रुद्र अकेला क्यों है और रूही उसके साथ क्यों नहीं है। रुद्र अपने कमरे में रूही को ढूंढता है, लेकिन वो वहां नहीं होती है। वो नीचे हॉल में जाता है और परी को बुलाता है। परी ये सुनकर डर जाती है और बताती है कि उसे लगा कि रूही ऑफिस गई है। रुद्र किसी से बात करते हुए विला से बाहर निकल जाता है। कामना रूही के जाने के बारे में लापरवाह टिप्पणी करती है। हर कोई रूही की तलाश करने के बारे में चिंतित है। अब आगे, चैप्टर 209। अब आगे, वहीं दूसरी तरफ मंदिर के अंदर एक कमरे में देवांश के जाने के बाद दिशा वहीं घुटनों के बल बैठ रूहने लगती है और अपनी माँ की बातों को याद करते हुए कहती है, सॉरी माँ, मैं आपकी बातों को पूरा नहीं कर पाई। आपने मुझसे कहा था कि कभी भी किसी ऐसे इंसान की शादी मत करना जो तेरे लिए इस तरह पागल हो, पर माँ देखो ना, मैं आज उस इंसान से शादी करने के लिए मजबूर हूँ। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, पर मैं मजबूर हूँ, क्योंकि इतने सालों से रूही के छिपाया गया सच मैं यूं सामने नहीं आने दे सकती और ना ही मैं आप लोगों के पास वापस आ सकती हूँ। इतना बोल वे फिर से रोने लगती है। कुछ देर यूं ही रोने के बाद वे अपने आंसू पोंछ उस लहंगे को उठा तैयार होने चली जाती है। कुछ देर में वे लहंगे को पहन बाहर आती हैं और शीशे के सामने बैठ जाती हैं। शीशे में खुद को देख उसकी आंखों में दोबारा आंसू आ जाते हैं। वे रोना नहीं चाहती थी, पर उसके आंसू है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे जैसे कैसे वहां रखी ज्वेलरी को पहनती हैं और फिर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके ज्यादा उसका कुछ भी करने का मन नहीं था, पर इतने में ही वे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। तभी रूम का गेट खुलता है और देवांश दूल्हे की शेरवानी पहन अंदर आता है। वे भी उस दूल्हे की शेरवानी में काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। वे मुस्कुराते हुए अंदर आता है और दिशा को शादी के जोड़े में शीशे के पास बैठा देख उसके पास चला जाता है। दिशा के पास जावे दिशा का हाथ पकड़ उसे वहां से खड़ा करता है और उसे ऊपर से नीचे तक एकटक देखने लगता है, क्योंकि उस शादी के जोड़े में दिशा काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं दिशा देवांश को ऐसा करता देख अपनी नजरें फेर लेती है। वहीं दिशा को अपनी नजरें फेरते हुए देख देवांश दिशा के गालों पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला, गुड गर्ल, तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। इतना बोल वे पास में रखी हुई चूड़ियों को उठा दिशा को पहनने लगता है, क्योंकि दिशा ने चूड़ियां नहीं पहनी थी। वहीं देवांश को चूड़ियां पहनाता हुआ देख दिशा अपने हाथ पीछे लेने लगती है, मगर देवांश उसके हाथ को नहीं छोड़ता और एक कर सारी चूड़ियां दिशा को पहना देता है। फिर दिशा को देखते हुए बोला, गुड गर्ल, अब परफेक्ट है, चलो। देवांश की बात सुनकर दिशा बोली, सर प्लीज ये सब मत कीजिए, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, प्लीज अभी भी समय है, रुक जाइए, आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। दिशा की बात सुनकर देवांश बोला, गुड गर्ल, मैंने कहा तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया, तुमने खुद शादी के लिए हामी भरी, मैंने तो तुम्हें ऑप्शन दिया था यहाँ से जाने के लिए, पर तुम ही नहीं जाना चाहती तो मैं क्या करूँ। देवांश की बात सुनकर दिशा अपना चेहरा दोबारा फेर लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहे उसके गालों पर आ जाते हैं, क्योंकि उसे मालूम था कि देवांश अब नहीं रुकने वाला। वहीं देवांश अब बिना रुके दिशा का हाथ पकड़ वहां से बाहर चला जाता है और बाहर मंदिर के सामने बने मंडप के पास आकर खड़ा हो जाता है। इस समय मंदिर के चारों तरफ देवांश के बॉडीगार्ड फैले हुए थे और मंडप के पास पंडित जी बैठे मंत्र पढ़ रहे थे और मयंक वहीं साइड में खड़ा हुआ सारा नजारा देख रहा था। दिशा को देख उसे बुरा तो लग रहा था,
मगर उसे पता था कि वे कुछ भी कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसने दिशा की मदद करने के बारे में सोची भी तो उसका वे शैतान बॉस उसे जिंदा ही मार डालेगा।